अध्ययन लेख 28। इस लेख का अध्ययन 13 से 19 सितंबर के दौरान किया जाएगा। विषय: होड़ मत लगाइए, शांति बनाए रखिए। ये लेख गलातियों 5 के 26 पर आधारित है, जहां लिखा है, हम अहंकारी न बने, एक दूसरे को होड़ लगाने के लिए ना उकसाएं और एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। गीत 101। एकता में रहकर काम करें। लेख की एक झलक: अगर मिट्टी के बर्तन में दरारें पड़ जाएं, तो वो जल्दी टूट सकता है। उसी तरह अगर मंडली के कुछ भाई बहन खुद को दूसरों से बेहतर समझें, तो मंडली की एकता और शांति भंग हो सकती है। इस लेख में हम जानेंगे कि हमें खुद को दूसरों से बेहतर क्यों नहीं समझना चाहिए और हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि मंडली में शांति बनी रहे। पैराग्राफ एक। सवाल: जब लोग एक दूसरे से होड़ लगाते हैं तो क्या होता है? आज दुनिया में बहुत से लोग एक दूसरे से होड़ लगाते हैं, जैसे कुछ बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ियों को जानबूझकर चोट पहुंचाते हैं ताकि वो जीत सकें, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बड़े कॉलेज में दाखिल होने के लिए परीक्षा में नकल करते हैं। सच्चे मसीही जानते हैं कि ये सब शरीर के काम हैं। गलातियों 5 का 19 से 21। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मंडली में कुछ भाई बहन खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे और अनजाने में होड़ लगाने के लिए उकसाएं? अगर ऐसा है तो मंडली में एकता नहीं रहेगी। पैराग्राफ 2। सवाल: इस लेख में हम क्या जानेंगे? इस लेख में हम जानेंगे कि हम किन वजहों से खुद को दूसरों से बेहतर समझने लग सकते हैं। हम बाइबल से कुछ लोगों के उदाहरणों पर भी ध्यान देंगे जिन्होंने दूसरों को खुद से बेहतर समझा। लेकिन आइए सबसे पहले हम खुद की जांच करें कि हम किस इरादे से यहोवा की सेवा करते हैं। खुद को जांचिए। पैराग्राफ 3। सवाल: हमें खुद से कौन से सवाल करने चाहिए? हमें बीच बीच में खुद से कुछ सवाल करने चाहिए, जैसे, क्या मैं खुद के बारे में तभी अच्छा महसूस करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि मुझमें दूसरों से ज्यादा काबिलियतें हैं? क्या मैं मंडली में इसलिए मेहनत करता हूँ ताकि दूसरों को जता सकूं कि मैं उनसे बेहतर हूँ? या क्या मैं इसलिए मेहनत करता हूँ ताकि यहोवा मुझसे खुश हो? इस तरह के सवाल करना अच्छी बात है, क्यों? आइए बाइबल से जानें। पैराग्राफ 4। सवाल: जैसा गलातियों 6:3-4 में लिखा है, हमें खुद की तुलना दूसरों से क्यों नहीं करनी चाहिए? बाइबल बताती है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। गलातियों 6:3-4 में लिखा है, अगर कोई कुछ ना होने पर भी खुद को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, मगर हर कोई अपने काम की जांच करे, तब वो अपने ही काम से खुशी पाएगा, ना कि दूसरों से खुद की तुलना करके। इसकी एक वजह है, अगर हम सोचें कि हम दूसरों से बेहतर हैं तो हम घमंडी बन सकते हैं। दूसरी वजह, अगर हम सोचें कि भाई बहन हमसे बेहतर हैं तो हम निराश हो सकते हैं। दोनों तरह की सोच सही नहीं है। ग्रीस में रहने वाली बहन कैटरीना कहती है, जब मैं देखती थी कि दूसरी बहनें मुझसे ज्यादा खूबसूरत हैं, प्रचार में अच्छे से बात करती हैं और उनके बहुत सारे दोस्त हैं, तो मुझे बुरा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बेकार हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि यहोवा ने हमें अपना सेवक इसलिए नहीं बनाया कि हम खूबसूरत हैं या अच्छे से बात करते हैं या हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बल्कि इसलिए बनाया है क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं और उसके बेटे की सुनते हैं। पैराग्राफ 5। सवाल: भाई ह्यून के उदाहरण से आप क्या सीखते हैं? हम खुद से एक और सवाल कर सकते हैं, क्या मैं भाइयों के साथ शांति बनाए रखता हूँ या बात बात पर उनसे बहस करता हूँ? दक्षिण कोरिया में रहने वाले एक प्राचीन भाई ह्यून का उदाहरण लीजिए। एक वक्त आया जब वो दूसरे प्राचीनों से जलने लगा। इस वजह से वो कहता है, मैं उनमें कमियां निकालने लगा और बात बात पर उनसे बहस करता था। मेरी वजह से मंडली में फूट पड़ गई थी। यून के कुछ दोस्तों ने उसे अपनी गलती का एहसास दिलाया। उसने अपनी सोच बदली और आज वो अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अगर हमें लगे कि हमारी वजह से मंडली में होड़ की भावना आ रही है तो हमें तुरंत खुद को बदलना चाहिए और मंडली में शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। अहंकार या ईर्ष्या मत कीजिए। पैराग्राफ 6 सवाल। गलतियों 5:26 के मुताबिक होड़ की भावना कैसे शुरू होती है? गलतियों 5:26 में लिखा है, हम अहंकारी ना बने, एक दूसरे को होड़ लगाने के लिए ना उकसाएं और एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। मंडली में होड़ की भावना अहंकार और ईर्ष्या की वजह से आती है। एक अहंकारी व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है और जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वो चाहता है कि उसके पास वही चीज हो जो सामने वाले के पास है, और तो और वो उस व्यक्ति से वो चीज छीनने की कोशिश करता है। देखा जाए तो जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वो अपने भाई से नफरत करता है। हमें अहंकार और ईर्ष्या से खबरदार रहना चाहिए। पैराग्राफ 7 सवाल। एक मिसाल से समझाइए कि अहंकार और ईर्ष्या करना क्यों खतरनाक है। अहंकार और ईर्ष्या होना कितना खतरनाक है इसे समझने के लिए एक लकड़ी का उदाहरण लीजिए जिसमें दीमक लगी है। बाहर से वो लकड़ी ठीक ठाक लगती है लेकिन अंदर से वो खोखली हो चुकी है और एक न एक दिन वो पूरी तरह बेकार हो जाती है। अहंकार और ईर्ष्या भी उस दीमक की तरह है जिनमें ये अवगुण होते हैं। वो एक न एक दिन यहोवा की सेवा करना छोड़ देते हैं और अपने साथ दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं। लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हम अहंकार और ईर्ष्या ना करें? पैराग्राफ 8 सवाल। कौन सी सलाह मानने से हम अहंकार नहीं करेंगे? पौलुस ने फिलिप्पी की मंडली को जो सलाह दी थी उसे मानने से हम अहंकार नहीं करेंगे। उसने कहा, झगड़ालू रवैये या अहंकार की वजह से कुछ ना करो, मगर नम्रता से दूसरों को खुद से बेहतर समझो। फिलिप्पियों 2:3। अगर हम दूसरों को खुद से बेहतर समझेंगे तो हम उन भाई बहनों से होड़ नहीं लगाएंगे जिनमें हमसे ज्यादा काबिलियतें या हुनर हैं। इसके बजाय हम खुश होंगे कि वो अपनी काबिलियतें या हुनर यहोवा की सेवा में लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन भाई बहनों में बहुत सी काबिलियतें हैं, अगर वो पौलुस की सलाह माने तो वो हमें अच्छाइयां देख पाएंगे। इस तरह मंडली की शांति और एकता बनी रहेगी। पैराग्राफ 9 सवाल। हमें क्या करना चाहिए ताकि हम किसी भाई या बहन से ईर्ष्या ना करें? अगर हमें मर्यादा का गुण होगा तो हम दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेंगे। हम अपनी हद पहचानेंगे और हर मामले में अव्वल बनने की कोशिश नहीं करेंगे। हम ये साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम में दूसरों से ज्यादा काबिलियतें या हुनर हैं। इसके बजाय हम उनसे सीखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई भाई अच्छे भाषण देता है तो हम उससे पूछेंगे कि वो भाषण की तैयारी कैसे करता है, या अगर कोई बहन अच्छा खाना पकाती है तो हम उससे खाना बनाना सीखेंगे। उसी तरह अगर एक जवान भाई या बहन को दोस्त बनाने में दिक्कत होती है तो वो ऐसे व्यक्ति से सलाह ले सकता है जिसके बहुत सारे दोस्त हैं। इस तरह हम अपने हुनर बढ़ा पाएंगे और दूसरों से ईर्ष्या भी नहीं करेंगे। बाइबल में बताए कुछ लोगों से सीखिए। पैराग्राफ 10 सवाल। गिदोन के सामने कौन सी मुश्किल आई? ध्यान दीजिए कि गिदोन और एप्रेम गोत्र के लोगों के बीच क्या हुआ। यहोवा ने गिदोन और उसके 300 आदमियों को जीत दिलाई थी, लेकिन एप्रेम के आदमी गिदोन की तारीफ करने के बजाय उससे झगड़ने लगे। उन्हें इस बात का बुरा लगा कि गिदोन ने उन्हें शुरू से लड़ाई में अपने साथ नहीं लिया। उन्हें लग रहा था कि लोग अब उसके गोत्र की इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि गिदोन की वजह से यहोवा के नाम की महिमा हुई और उसके लोगों की रक्षा। पैराग्राफ 11 सवाल। गिदोन ने क्या किया ताकि बात और ना बिगड़े? गिदोन ने एप्रेम के आदमियों से कहा, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी बराबरी करने वाला? उसने उन्हें वो घटना याद दिलाई जब यहोवा ने उनसे बड़े बड़े काम करवाए थे। ये सुनकर उन आदमियों का गुस्सा ठंडा हो गया। न्यायियों 8:2-3। गिदोन नहीं चाहता था कि बात आगे बढ़े, इसलिए उसने नम्र होकर उनसे बात की और शांति बनाए रखी। पैराग्राफ 12। सवाल, हम एप्रैम के आदमियों और गिदोन से क्या सीखते हैं? इस घटना से हम क्या सीखते हैं? एप्रैमी आदमियों से हम सीखते हैं कि हमें अपने मान सम्मान के बारे में सोचने के बजाय यहोवा के मान सम्मान के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम प्राचीन या परिवार के मुखिया हैं तो हम गिदोन से एक बात सीख सकते हैं। अगर कोई हमसे किसी वजह से नाराज है तो हमें बातों को उसके नजरिए से देखना चाहिए। उस व्यक्ति ने जो अच्छे काम किए हैं उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये सब करने के लिए हम में नम्रता होनी चाहिए, खासकर जब हमें पता हो कि सामने वाला गलत है। ये बात ज्यादा मायने रखती है कि भाई बहनों के साथ रिश्ता अच्छा हो, ना कि ये कि हम सही हैं या गलत। पैराग्राफ 10 से 12 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, गिदोन नम्र था इसलिए उसने एप्रैम के आदमियों के साथ शांति बनाए रखी। पैराग्राफ 13। सवाल क, हन्ना के सामने कौन सी मुश्किल आई? सवाल ख, उसने क्या किया? जरा हन्ना के बारे में सोचिए। उसकी शादी लेवी गोत्र के एक आदमी से हुई थी जिसका नाम एलकाना था। एलकाना की एक और पत्नी थी पनिन्ना, लेकिन वो पनिन्ना से ज्यादा हन्ना से प्यार करता था। पनिन्ना के बच्चे थे मगर हन्ना का कोई बच्चा नहीं था। इस वजह से पनिन्ना हन्ना को दुख देने के लिए उस पर लगातार ताने कसती थी। हन्ना को बहुत बुरा लगता था। आयत कहती है कि वो रोने लगती और कुछ खाती पीती नहीं थी। 1 Samuel 1:2-7। लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हन्ना ने पनिन्ना से बदला लिया। इसके बजाय उसने यहोवा को अपने दिल की बात बताई और भरोसा रखा कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। हम नहीं जानते कि बाद में पनिन्ना ने हन्ना को ताने देने बंद किए या नहीं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि उसके बाद से हन्ना को मन की शांति मिली और आयत बताती है उसके चेहरे पर फिर उदासी ना रही। 1 Samuel 1:10-18। पैराग्राफ 14। सवाल, हम हन्ना से क्या सीख सकते हैं? हम हन्ना से क्या सीखते हैं? अगर कोई हमसे होड़ लगाने की कोशिश करता है तो हमें उसके साथ होड़ लगाने की जरूरत नहीं है। बुराई के बदले बुराई करने के बजाय हमें उस व्यक्ति के साथ शांति बनाए रखनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति फिर भी होड़ लगाता है तो हमारा मन बेचैन नहीं होगा, हम खुश रहेंगे। पैराग्राफ 13 और 14 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, हन्ना को भरोसा था कि यहोवा सब कुछ ठीक कर देगा, इसलिए उसे मन की शांति मिली। पैराग्राफ 15। सवाल, अपुल्लोस और पौलुस किन बातों में एक जैसे थे? अब आइए देखते हैं कि हम अपुल्लोस और प्रेषित पौलुस से क्या सीख सकते हैं। उन दोनों को शास्त्र की अच्छी समझ थी, बहुत से लोग उन्हें जानते थे और वो लोगों को अच्छे से सिखाते थे। उन्होंने कई लोगों को चेला बनाया लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से जलते नहीं थे। पैराग्राफ 16। सवाल, अपुल्लोस के बारे में कुछ बताइए। अपुल्लोस का जन्म सिकंदरिया शहर में हुआ था। 1 सदी में लोग शिक्षा लेने के लिए इसी शहर में आते थे। अपुल्लोस बात करने में बहुत माहिर था और उसे शास्त्र का अच्छा ज्ञान भी था। 18:24। कुछ समय के लिए जब वो कोरिंथ में था तो वहां के कुछ भाइयों ने ये साफ दिखाया कि वो पौलुस और दूसरों भाइयों से ज्यादा अपुल्लोस को पसंद करते हैं, लेकिन अपुल्लोस ने ऐसी सोच को बढ़ावा नहीं दिया। इसीलिए पौलुस ने उसे दोबारा कुरंत जाने को कहा। अगर उसने मंडली में फूट पैदा की होती तो पौलुस उसे वापस कुरंत नहीं भेजता। अपुल्लोस ने प्रचार करने और भाई बहनों की हिम्मत बढ़ाने में अपने हुनर लगाए। अपुल्लोस बहुत नम्र भी था। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब एक बार प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसे परमेश्वर की राह के बारे में सही जानकारी दी और अच्छी तरह समझाया तो उसने बुरा नहीं माना। 18:24-28। पैराग्राफ 17। सवाल, पौलुस ने शांति बनाए रखने के लिए क्या किया? प्रेषित पौलुस अच्छे से जानता था कि अपुल्लोस ने कितने अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि अपुल्लोस उससे आगे निकल जाएगा। उसने कुरिन्थ की मंडली को जो लिखा उससे पता चलता है कि वो कितना नम्र था और अपनी हद पहचानता था। जब मंडली के लोगों ने कहा कि मैं पौलुस का चेला हूं, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने उन्हें समझाया कि उनका ध्यान किसी इंसान पर नहीं बल्कि यहोवा और यीशु मसीह पर होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 3:3-6। पैराग्राफ 18। सवाल, हम प्रेषित पौलुस और अपुल्लोस से क्या सीख सकते हैं? पहला कुरिन्थियों 4:6-7। हम पौलुस और अपुल्लोस से क्या सीखते हैं? हो सकता है कि हमने यहोवा की सेवा में बहुत मेहनत की हो और कई लोगों को सच्चाई सिखाई हो, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये सब यहोवा की मदद से ही हो पाया है। हम इन भाइयों से एक और बात सीख सकते हैं। जिन लोगों के पास मंडली में ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें इस बात का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि मंडली में शांति बनी रहे। हम बहुत खुश हैं कि सहायक सेवक और प्राचीन मंडली में शांति बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो जो भी सलाह देते हैं बाइबल से देते हैं, ना कि अपने मन से, और भाइयों का ध्यान हमारे आदर्श यीशु मसीह की तरफ खींचते हैं। पहला कुरिन्थियों 4:6-7 में लिखा है, भाइयों, मैंने तुम्हारे भले के लिए खुद को और अपुल्लोस को मिसाल बनाकर ये बातें कही हैं, ताकि तुम हमारी मिसाल से इस नियम पर चलना सीखो, जो लिखा है उससे आगे ना जाना, ताकि तुम घमंड से फूलकर एक को दूसरे से बेहतर ना समझो। तुझ में ऐसा क्या है जो तुझे दूसरों से बढ़कर समझा जाए? दरअसल तेरे पास ऐसा क्या है जो तूने पाया ना हो? अगर तूने इसे पाया है तो तू इस तरह शेखी क्यों मारता है, मानो तूने नहीं पाया? पैराग्राफ 15-18 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, अपुल्लोस और पौलुस जानते थे कि यहोवा की वजह से ही वो अपनी सेवा कर पा रहे हैं, इसलिए वो एक दूसरे से जलते नहीं थे। पैराग्राफ 19। सवाल, इस लेख से हमने क्या सीखा? हम सब में कोई ना कोई हुनर या काबिलियत है, हमें उसका इस्तेमाल दूसरों की सेवा में करना चाहिए। पहला पत्रस 4:10। शायद हमें लगे कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस तरह छोटी छोटी सिलाइयों से एक सुंदर पोशाक बनती है, उसी तरह हमारे छोटे छोटे कामों से मंडली में एकता और शांति बनी रहती है। अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर दूसरों से बेहतर बनने की सोच आ रही है, तो हमें इसे जड़ से निकाल देना चाहिए और मंडली में शांति और एकता बनाए रखनी चाहिए। कुछ और जानकारी, होड़ लगाने के लिए मत उकसाइए। हम नहीं चाहते कि मंडली में कोई भी एक दूसरे से होड़ लगाए, लेकिन हो सकता है कि अनजाने में हमारी वजह से भाई बहनों में होड़ लगाने की भावना आ जाए। उदाहरण के लिए, शायद हम अपनी राय बताएं कि कौन सबसे अच्छा भाषण या जवाब देता है, या कौन सबसे अच्छा पायनियर है। हो सकता है हमें किसी प्राचीन की बात बहुत अच्छी लगती हो और हम उसकी तुलना दूसरे प्राचीनों से करने लगे। प्राचीन भी अपरिपूर्ण है, इसलिए अगर एक प्राचीन की बार बार दूसरे प्राचीन से तुलना की जाएगी, तो वो दूसरे प्राचीन से होड़ लगाने लग सकता है। इससे मंडली की शांति भंग हो सकती है। वापस लेख पर, आपका जवाब क्या होगा? हमें अपने इरादे क्यों जांचने चाहिए? हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी वजह से भाई बहनों में होड़ की भावना ना आए? हमने गिदोन, हन्ना, अपुल्लोस और पौलुस से क्या सीखा? गीत 80। परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। लेख समाप्त।